शान सुभाष जी की व्हीलचेयर पकड़े उन्हें गार्डन में घुमा रहा था। दोनों खामोश थे। कुछ देर बाद सुभाष जी ने व्हीलचेयर के टायर पर अपनी हथेली रखकर उसे रोक दिया तो शान ने उन्हें हैरानी से देखते हुए सवाल किया, क्या हुआ डैड, आपने व्हीलचेयर को रोक क्यों दिया? हमें आपसे कुछ बात करनी है बेटा, चलकर कहीं बैठते हैं। शान ने आराम से उनकी बात सुनी, वहीं उसी जगह पर चला गया जहां चेयर वगैरह रखी हुई थी। डैड, पहले मैं आपसे कुछ पूछूं, शान ने उनके सामने बैठते हुए सवाल किया तो सुभाष जी ने मुस्कुराकर कहा, पूछिए बेटा। इतने सालों तक आपने खुद को उस कमरे में कैद रखा, मैंने आपको इतना समझाया, यहाँ तक कि कंसल्टेंट से आपका ट्रीटमेंट भी करवाया, पर फिर भी कभी आप उस कमरे से बाहर आने को तैयार नहीं हुए। हर वक्त बस मरने की बातें करते थे, जैसे आपकी जीने की चाह ही खत्म हो गई हो। मेरे लाख कहने पर आप अपने मन के अंधेरों से निकलने को तैयार नहीं थे, फिर आज एक अनजान लड़की के कहने पर आप एकदम से इतने कैसे बदल गए? आज आपने सबके साथ खाना खाया, गार्डन में घूमे भी, और आज आपने मरने की नहीं जिंदगी जीने की बात कही। उसको आए हुए कुछ घंटे ही हुए हैं और आपने उसको अपने दिल में जगह दे दी, उसके कहने पर फिर से जीने की बातें करने लगे, क्यों डैड? सुभाष जी ने उसकी बात सुनकर गंभीरता से सवाल किया, लगता है आप हमारे अंदर आए बदलावों को देखकर खुश नहीं हुए? शान उनके पास जमीन पर बैठ गया, फिर उनकी हथेली को थामते हुए कहा, ऐसा नहीं है डैड, आप जानते हैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे लिए तो मेरी माँ और बाप दोनों आप ही हैं। आपको उस हालत में देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है इसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते। जब आप मरने की बातें करते थे तो कितना मजबूर महसूस करता था मैं खुद को, कि आपके दर्द की तकलीफ की वजह जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको एक बार फिर पहले जैसे हंसते मुस्कुराते बातें करता देख मैं बहुत खुश हूँ। बस समझ नहीं पा रहा कि कुछ घंटों पहले इस घर में आई उस लड़की में ऐसा क्या है जो आप सब उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आपने कभी अपने बेटे की बात नहीं मानी और उस लड़की की हर बात मानते हैं। शान की आवाज़ में शिकायत झलक रही थी। सुभाष जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसकी हथेलियों पर अपनी हथेली की पकड़ कसते हुए बोले, अगर हम आपको वजह बताएंगे कि क्यों हमने इतनी जल्दी उन्हें अपना मान लिया, क्यों हम उनकी कोई बात नहीं टालते, क्यों उनके आने से हमारे मन में ज़िंदगी जीने की चाह जाग गई है, तो आप नाराज़ होंगे, पर फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं कि क्यों आज पहली बार मिलने पर भी हमने उन्हें अपनी बेटी बना लिया। आज सुबह जब हमने उन्हें पहली बार देखा तब उनकी मासूमियत ने हमें मजबूर कर दिया कि हम उन्हें अपनी बेटी बनाएं। उनके अंदर हमें आपकी माँ की छवि नजर आती है। ये सुनते ही शान के भाव सख्त हो गए। उसने उठना चाहा पर सुभाष जी ने उसके हाथ को कसके पकड़कर उसको रोक लिया और आगे बोले, बेटा हमें नहीं पता कि क्या सच है और क्या हमारी नज़रों का धोखा। कई बार आंखों देखा भी झूठ होता है। आपकी माँ से आप नाराज़ हैं पर हम अपनी पत्नी से ना कभी नफरत कर सकते हैं ना ही नाराज़ हो सकते हैं। अतीत में जो हुआ हमारा दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि सावित्री हमें धोखा दे सकती है। हम उन्हें बहुत अच्छे से जानते थे। वो एक बहुत अच्छी बेटी, एक बहुत अच्छी प्रेमिका और उससे भी अच्छी पत्नी थी। आप पर तो वो अपनी जान छिड़कती थी, बहुत प्यार करती थी आपसे, आपकी हर शरारत को मुस्कुराकर सह जाती थी। उनकी जैसी साफ दिल लड़की हमने पहले कभी नहीं देखी थी, पर आज आरवी को देखा। वही समझदारी, वही मासूमियत, वही फूलों सा कोमल दिल और उसमें हर रिश्ते के लिए बेशुमार प्यार और अपनापन। आपकी दुनिया में सगी माँ अपने बच्चे की नहीं होती, पर आरवी की आंखों में हमने अंशिभा के लिए इतनी ममता देखी है जैसे उन्होंने ही उन्हें जन्म दिया हो। आपकी माँ गलत नहीं हो सकती बेटा, वैसे ही आरवी भी गलत नहीं है। वो आपकी अर्धांगिनी बनने के काबिल है, एक वही है जो आपको फिर से जीने सिखा सकती है। आरवी का दिल बहुत साफ है, वो आपकी और अंशिका की जिंदगी की हर कमी को पूरा कर सकती है। वो हमारी इतनी परवाह करती है जितनी अगर हमारी सगी बेटी होती तो वो भी नहीं करती। आज लगभग सारा दिन वो हमारे पास रही, हमारी सेवा करती रही। हमारी मानिए बेटा, अपना लीजिए उन्हें, वो आपके और इस घर के लिए एकदम परफेक्ट है। मैं ऐसा नहीं कर सकता डैड, पता नहीं उसने आप सब पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि आप सब उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे। सही कहा आपने, वो बिल्कुल मम्मा जैसी ही होगी। जैसे उन्होंने आपको धोखा दिया वैसे ही वो मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए आप सबका इस्तेमाल कर रही है, पर मैं उसे कभी उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। आप माँ के प्यार के आगे उनके दिए धोखे को भूल सकते हैं, पर मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। उन्होंने मुझमें मेरी माँ को छीन लिया, उनकी वजह से आप इस हानत में हैं, उनकी वजह से मुझसे मेरा बचपन छीन गया। वो अपने 9 साल के बेटे को छोड़कर चली गई, पैसों के लिए उन्होंने आपको धोखा दिया, आपके प्यार को ठुकरा दिया। उन्होंने अपने स्वार्थ के आगे ना आपको कुछ समझा ना ही उन्हें अपने बेटे का ख्याल आया। अगर इतनी ही अच्छी पत्नी थी वो तो क्यों उन्होंने आपके पीठ पीछे आपके ही दोस्त के साथ? अगर वो इतनी ही अच्छी माँ थी तो मुझे छोड़कर जाते वक्त उन्हें एक बार भी मेरा ख्याल क्यों नहीं आया कि उनका 9 साल का बेटा है जिसे हर काम के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती थी, वो कैसे रह पाएगा उनके बिना? आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपने उन्हें माफ़ कर दिया, पर मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। उनके दिए धोखे की वजह से मैं बाप के होते हुए भी अनाथ बनकर रह गया। अगर बड़े पापा बड़ी माँ नहीं होते तो कौन देखता आपको, कौन पालता मुझे? वो एक खुदगर्ज औरत थी जिन्होंने अपने स्वार्थ के आगे हर रिश्ते को शर्मसार कर दिया। उनकी वजह से मुझे माँ शब्द से नफरत हो गई है। सिर्फ वही क्यों, दुनिया में हर औरत सिर्फ धोखा देना जानती है। अपने स्वार्थ के आगे उन्हें सामने वाले का ना प्यार दिखता है ना उनका दर्द नजर आता है, उन्हें बस अपना फायदा नजर आता है। जैसे आरवी को फायदा नजर आ रहा है मुझमें। इतना पैसे वाला पति इतनी आसानी से मिल गया तो वो उसे अपने हाथों से जाने कैसे दे सकती है? मुझे हासिल करने के लिए आप सबको इस्तेमाल कर रही है।
इन मासूम सूरत वाली लड़कियों का हथियार ही उनकी सूरत होती है, जिसका इस्तेमाल करके वो सामने वाले को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाती है और फिर उन्हें बर्बाद करके कोई दूसरा शिकार ढूंढने निकल जाती है। पर मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला, उसे वो कभी नहीं मिलेगा जो वो पाना चाहती है। वो शान बहुत पीछे छूट चुका है जो दिल से सोचा करता था और जिसे अपने प्यार के जाल में फंसाना बहुत आसान था। पर अब जो शांतनु आपके सामने है वो दिल से नहीं दिमाग से काम करता है। वो लोगों का शिकार बनाता नहीं है बल्कि उनका शिकार करता है। ना तो मेरा प्यार पर अब कोई विश्वास है और ना ही मेरे लिए शादी का कोई मतलब है। वो आपकी बहू बनकर भले ही इस घर में रहे पर मेरी पत्नी कभी नहीं बन सकती। मैं अब किसी को मौका नहीं दे सकता कि अपने प्यार के जाल में फंसाकर मुझे हर्ट करे। इसलिए अगर आप सबको लगता है कि मैं उसकी मासूम सी सूरत के छलावे में आकर उसे अपनी पत्नी मान लूंगा तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए, क्योंकि ना ही मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह है और ना ही मेरी जिंदगी में। चलिए आपको कमरे में छोड़ दूं। शान ने अपनी बात कही और उनको लेकर आगे बढ़ गया। वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था। एक बार फिर अतीत सी कुछ कड़वी यादें उसके जहन में ताज़ा हो गई थी। उसने उन्हें उनके कमरे में छोड़ा और शाम को उनका ख्याल रखने को कहकर वहां से निकल गया। टू बी कंटिन्यूड।